श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की को शिक्षा मध्य लीला 20वां अध्याय श्लोक नंबर 1। वंदे अनंत दूतैर्सूर्य श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् साधुभक्ति शास्त्र प्रवर्तक। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पास अत्यंत अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। उनके कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। यथा गौड़े सनातन अच्छे बंदी साले श्री रूप गोसाई पत्री आईल न काले। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने बंदी बना लिया था जब उन्होंने राज कार्य करने के लिए इच्छा नहीं की थी। तब रूप गोस्वामी अपने कनिष्ठ भ्राता अनुपम के साथ आकर चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके हैं और वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आते समय रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के पास एक पत्र भेजा था ये बताते हुए कि हम चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं और आप अपना कार्य करके किस प्रकार बंदीशाला से मुक्त होंगे ये कार्य करके आप पीछे आइए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो यहां बताया जा रहा है कि जब सनातन गोस्वामी बंगाल में बंदी थे तब उन्हें श्रील रूप गोस्वामी का पत्र मिला। तो उस पत्र में रूप गोस्वामी ने इस प्रकार लिखा था जिससे कि दूसरे लोग जो उस पत्र को प्राप्त होंगे उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि रूप गोस्वामी क्या संकेत दे रहे हैं इस पत्र के माध्यम से सनातन गोस्वामी को, क्योंकि वो बंदीशाला में थे इसलिए पत्र दूसरों के हाथ में पड़ सकता था। इसलिए सांकेतिक रूप में रूप गोस्वामी ने ये श्लोक लिखकर भेजा था सनातन गोस्वामी के पास। यदुपते को गता मथुरापुरी रघुपते को गतोत्तर कोसला इति विचिन्त कुरुस्व मनस्थिर न सदिदं जगदित्य अवधारय। यदुपति की मथुरापुरी कहाँ गई, रघुपति की उत्तरी कुशला कहाँ गई, यह सोचकर कि यह ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है तुम अपने मन को स्थिर करो। तो इस प्रकार पत्र में उल्लेख था। और सनातन गोस्वामी क्योंकि दोनों राज दरबार में कार्य कर चुके थे इसलिए उनको राजनीति और कूटनीति दोनों ही पता थे। तो इस प्रकार इस श्लोक को देखकर सनातन गोस्वामी समझ गए कि रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अब मथुरा आ रहे हैं, इसलिए तुम अपने मन को स्थिर करके वहां उनसे मिलने के लिए प्रयत्न करना। पत्री पाया सनातन आनंदित हैला, जबन रक्षक पास कहते लगेला। जब सनातन गोस्वामी को चिट्ठी मिली तो अत्यधिक प्रसन्न हुए। ये तुरंत जो जवन मांसाहारी जेल अधीक्षक था उसके पास गए और उसको इस तरह बोले। तुम्हें एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, किताब कुरान शास्त्र अच्छे तुम्हारे ज्ञान। तो सनातन गोस्वामी जानते थे राजनीति में कैसे शत्रु को भी मनाया जा सकता है। तो ये बंदी रक्षक, इसको बिना मनाए वो बंदीशाला से निकल नहीं सकते थे। और यदि वो जानते थे कि ये यवन मांस खाता है, फिर भी सनातन गोस्वामी ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए उसकी प्रशंसा की। और ये सत्य है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने पर वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने पहले उसको प्रसन्न करके अपनी कार्य सिद्धि करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हे महोदय, आप एक संत पुरुष हैं, तो जो पीर होते हैं उनको मुसलमान लोग संत पुरुष मानते हैं। तो कहते हैं कि आप एक जिंदा पीर हैं, जीवित संत पुरुष हैं और महाभाग्यशाली है। वो बंदी रक्षक से कह रहे हैं सनातन गोस्वामी। और आप कुरान और अन्य शास्त्रों के पूर्णतया ज्ञाता है, आप जानते हैं कुरान में क्या लिखा है और अन्य शास्त्रों में क्या लिखा है, इसलिए आप बहुत बड़े पंडित हैं इसके विषय में। एक बंदे छड़े जदि निज धर्म देखिया, संसार होते तारे मुक्त करे न गोसाया। तो यदि कोई व्यक्ति जो जीव इस संसार में बंदी है अर्थात बद्ध जीव है, उसको धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है, तो भगवान उस व्यक्ति को भव बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। तो ये परोक्ष में सनातन गोस्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सब इस संसार में बंदी है, बद्ध जीव है, बंदी अवस्था में है, बंदीशाला है ये संसार। तो इस संसार में जो लोग बंदीशाला में है, तो यदि कोई धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति को इस संसार से उद्धार करने के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है तो भगवान उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भी भगवान इस संसार की बंदीशाला से मुक्त कर देते हैं। तो ये शास्त्र की बात है, सनातन गोस्वामी ये कहकर बंदी रक्षक को मना रहे हैं कि यदि कोई संसार की बंदीशाला से किसी बंदी को मुक्त कर देता है तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। तो संसार में, संसार बंदीशाला में ये और एक बंदीशाला। तो इससे मुक्त कर देने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, ये परोक्ष में कह रहे हैं उसके लिए। तो जैसे भगवद गीता में भगवान का है नचत अस्मान मनुष्य से कश्चिन में प्रियकृतम। तो जो लोग इस संसार में भगवान के उपदेश को प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, जैसे कि इस संसार रूपी बंदीशाला से वो मुक्त हो जाए, तो भविता नच में तस्माद अन्य प्रियतर होगी। तो उस व्यक्ति से बढ़कर और कोई भगवान का प्रियतर नहीं हो सकता। ये पूर्वे अमी तुम्हार करिया छे उपकार, तुम्ही अमा छड़ी कर प्रति उपकार। तो जब सनातन गोस्वामी मंत्री थे राजा हुसैन साहब के दरबार में, तो उस स्मरण दिलाते हैं कि उन्होंने इस बंदी रक्षक का उस समय उपकार किया था, कई बार उपकार किया हो, क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका काम रहता है मंत्री के पास। तो वो यह स्मरण दिला रहे हैं कि हमने तुम्हारा उपकार किया था, और तुम यदि मुझे आज यहां से छोड़ दोगे तो तुम्हारा प्रति उपकार होगा, मेरे उपकार का तुम प्रतिदान दे। पांच सहस्र मुद्रा तुम्हें कर अंगीकार, पुण्य अर्थ दुई लाभ वे तुम्हारा। तो केवल सनातन गोस्वामी जानते थे कि केवल धर्म के नाम पर कोई छोड़ नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जो अर्थ रखा था सनातन गोस्वामी को बता दिया था कि ये अर्थ है, तो सनातन गोस्वामी ने उस अर्थ को अपने पास रखा था इस कार्य के लिए। तो 5000 मुद्रा उन्होंने रख दिया सामने, स्वर्ण मुद्रा, 5000 स्वर्ण मुद्रा उस समय, तो बंदी रक्षक के सामने रख दिया सामने, ताकि तुम इसको लो और मुझे छोड़ दो, इससे क्या होगा, तुम्हें अर्थ तो मिलेगा, इसके साथ साथ तुम्हारा पुण्य भी होगा कि तुम बंदी अवस्था से मुझे मुक्त कर रहे हो, तो दोनों ओर से तुम्हारा लाभ होगा। तबे से ही जवन कहे सुन मासा, तुम्हारे छड़ीब किंतु करी राज भय। तो उस बंदी रक्षक उसने कहा कि हम तो आपको छोड़ सकते हैं, किंतु मुझे राजा का डर है कि नवाब को पता चलेगा तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए मेरा भय। सनातन कहे तुम्ही ना करो राज भय, दक्षिण गया छे जदि ले उठियाओ या, तहारे कहियो से भय कृत्ये गल, गंगार निकट गंगा देखी झांप दिल। तो सनातन गोस्वामी ने उसको बता दिया कि अगर नवाब हुसैन साहब तुम्हें पूछेंगे तुम्हें क्या बोलना है, ये भी बता दिया। किंतु उसके पहले उन्होंने कहा कि अब तो नवाब दक्षिण में गए हैं, अर्थात ये ओडिशा पर आक्रमण करने के लिए आए थे उस समय, तो नवाब हुसैन साहब उत्कल पर आक्रमण करने के लिए आए हैं, और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गए हैं दक्षिण में, और यदि वो लौट कर आते हैं, इसका अर्थ है कि वो लौट कर नहीं भी आ सकते, युद्ध में मारे जा सकते हैं, क्योंकि उस समय उत्कल के जो राजा थे वो बलशाली थे, तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि गए हैं युद्ध में और युद्ध से लौटकर यदि आते हैं तब फिर यही बात उनको बताना, अगर नहीं आएंगे तो फिर तुम्हारा काम हो गया, कुछ बताना नहीं पड़ेगा। तो उनको कहना है कि ये सनातन ये बाह्य कृत्य करने के लिए गंगा के तट पर गया था और गंगा को देखकर गंगा में वो कूद पड़ा। तो ये बाह्य कृत्य अर्थात शौच के लिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो ये बताना कि वो शौच के लिए गए थे बाहर। अनेक देखिल तार लाग ना पाइल दाड़ू का सहित डूबी कहाँ वही गल। तो नवाब को बताना कि हमने बहुत प्रयास किया उसको खोजने के लिए, जब गंगा में वो कूद पड़ा तो हमने प्रयास किया खोजने के लिए किंतु उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी तो वो तैर भी नहीं सकता था, तो पता नहीं कहाँ गंगा में डूबकर मर गया पता नहीं। किछु भय नहीं आमी यदि से नारब दरवेश हयामी मक्का के जाइब। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम ये भी ये बात बता देना, और हो सकता है कि तुम अगर सोचते होगे कि फिर नवाब मुझे कहीं देख लेगा तो फिर तुम्हें दंडित करेगा, तुम झूठ बोला है, तो हम इस देश में नहीं रहेंगे। सनातन गोस्वामी ने आश्वस्त किया बंदी रक्षक कि हम इस देश में नहीं रहेंगे तो नवाब मुझे देख नहीं सकेगा, और हम क्या करेंगे ना दरवेश वेश में, दरवेश मतलब जो मुसलमान साधु होते हैं उस वेश में हम मक्का चले जाएंगे, जो मुसलमानों का तीर्थस्थान है तो हम वहां चले जाएंगे। तो नवाब को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए, तुम बोल देना कि वो तो मर गया होगा। तथापि जब न मन प्रसन्न न देखिला सात हजार मुद्रा तार आगे राशि कैला। तो जब सनातन गोस्वामी ने देखा कि इतना समझाने पर भी ये मुसलमान जो बंदी रक्षक हैं ये प्रसन्न नहीं है, वो सोच रहा है कि छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो सनातन गोस्वामी ने और उसको लोभ दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, वो 7,000 स्वर्ण मुद्रा रख दिया उसके सामने और लोभ है जवानेर मुद्रा देखिया रात्रि गंगा पार कैल दारुका काटिया। तब इतनी स्वर्ण मुद्राएं देखी बंदी रक्षक तो वो जीवन में उसको नहीं मिल सकता था, तो उसका लोभ बढ़ गया। तो उसने उसी रात सनातन गोस्वामी की जो हथकड़ियां थी उसको काट दे और उनको गंगा पार करवा दिया। गढ़ द्वार पथ छाड़िला नरे जाते रात्रि दिन चली आईला पतड़ा पर्वते। तो सनातन गोस्वामी जो नवाब का दुर्ग था जो रास्ता उसी की ओर जा रहा था मुख्य मार्ग, तो मुख्य मार्ग में नहीं गए क्योंकि उनको भय था कि क्योंकि नवाब का कोई आदमी देख लेगा तो समाचार दे देगा नवाब को, इसलिए मुख्य मार्ग छोड़कर उपमार्ग में वन पथ में चलते हुए वो निकल गए और पात्रा पर्वत के पास जाकर पहुंचे और रात दिन चल रहे थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कैसे अति शीघ्र वहां से दूर चले जाए, इसलिए रात दिन बिना खाए पिए वो चल रहे थे। तो इस प्रकार पात्रा पहाड़ी क्षेत्र में जाकर पहुंचे। तथा एक भौमिक हय तर ठाई गला पर्वत पार कर आमा विनती करेला। तो जब पात्रा पर्वत क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उसने देखा कि वहां कोई एक भौमिक जमींदार जो वहां रह रहा था, तो ये जाकर उससे मिले और उन्होंने उनसे विनती की कि हमें ये पहाड़ी इलाका थोड़ा पार करा दीजिए, क्योंकि उस समय पहाड़ी इलाका एक तो अनजान क्षेत्र था, उनका मार्ग पता नहीं था और ऐसे दस्युओं का डर भी रहता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस पहाड़ी इलाके को थोड़ा पार करा दीजिए। सी भुआर संग हय हाथ गणित भुआर कने कहे सही जानी कथा। तो वो जो जमींदार था उसके पास एक हाथ गणित मतलब ज्योतिष जो ज्योतिष वाला होता है ज्योतिषी जो हाथ देखकर बोल सकता है भविष्यवाणी कर सकता है, तो वो ज्योतिषी गिनती करके उसको पता चल गया, इसलिए वो सनातन गोस्वामी के बारे में ये जमींदार था उसके कान में कुछ फुसलाकर कुछ कहा। यहाँ रठाई सुवर्ण अष्टमोर सुनी आनंदित भुआ सनातन कहे। तो उस ज्योतिषी ने उस जमींदार से कहा कि इसके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, वो गिनती करके बोल दिया धीरे धीरे उस जमींदार को कि इसके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। तो ये सुनकर वो जमींदार बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर उसने सनातन गोस्वामी से कहा रात्रे पर्वत पार करीब निज लोक दिया भोजन कर तुम्हें रंधन करिया। तो उस जमींदार ने सनातन गोस्वामी से कहा कि अब आप यहाँ रसोई बनाइए, भोजन करिए और विश्राम करिए, रात के समय हम अपना आदमी देके आपको पर्वत क्षेत्र को पार करा देगा। एतबली अन्न दिल करिया सम्मान सनातन आसी तबे कैल नदी स्नान। तो ये बोलकर उस जमींदार ने सनातन गोस्वामी को दाल चावल आदि दिया रसोई करने के लिए और सनातन गोस्वामी गए नदी में स्नान करने के लिए। दुई उपवास कैला रंधन भोजने राजमंत्री सनातन विचारिला मने। तो 2 दिन से उपवास थे सनातन गोस्वामी, इसलिए स्नान करने के बाद उन्होंने रसोई और भोजन आदि किया। भोजन करने के बाद सनातन गोस्वामी क्योंकि राजमंत्री थे इसलिए उन्होंने सोचा, इस विषय पर विचार किया। ए भूया केने मोरे सम्मान करिलो इतचिंति सनातन ईशाने पूछेला। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि जमींदार मेरा जान पहचान का नहीं है और मैं आकर इससे कुछ सहायता मांग रहा हूं, किंतु ये हमारा सम्मान कर रहा है और हमें खाने के लिए भोजन बनाने के लिए दाल चावल आदि दे रहा है, तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। वो समझ गए सनातन गोस्वामी, क्योंकि राजमंत्री थे इसलिए उनको पता था। तो सनातन गोस्वामी ने ईशान से पूछा, ईशान उनका सेवक था जो साथ में उनका जा रहा। तो सेवक सनातन गोस्वामी ने सेवक से पूछा, क्या पूछा? तुम्हार ठाई जानी कि छु द्रव्य आछय, ईशान कहे मोर ठाई सत मोर। तो सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक ईशान से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ द्रव्य है, तो क्या द्रव्य है तुम्हारे पास ये बताओ। सनातन गोस्वामी समझ गए, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो सब दे दिए थे बंदी रक्षक। तो ईशान को पूछा जो उनका सेवक था, तो उसने कहा कि मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। उसने भी झूठ बोला, उसके पास 8 स्वर्ण मुद्रा थे, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। शनि सनातन तारे करिला भर्सन, संगे के काला जमा। तो सनातन गोस्वामी ने भर्सना की ईशान की, तो उन्होंने कहा कि तुम काल यम को साथ में लेकर क्यों आए हो? तो ये स्वर्ण मुद्रा है, काल यम है, क्योंकि पास में धन होगा तो कोई भी व्यक्ति आक्रमण कर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। रास्ते में कोई धन लेकर जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लाए, काल यम ले साथ में लेकर तुम चल रहे हो। इसका अर्थ है कि इसके लिए हमारा जीवन भी जा सकता है, क्योंकि वो समझ गए कि ये व्यक्ति हमारा इतना सम्मान कर रहा है, हो सकता है कि इसको पता चल गया होगा कि हमारे पास धन है, इसलिए वो इतना सम्मान करके हमें रख रहा है और बाद में हमको मार करके हमारा धन ले रहा है। तबे से सातम और हस्ते ते करिया, भुआर कछे जाया कहे मोहर धरिया। तो सनातन गोस्वामी ने वो 7 स्वर्ण मुद्राओं को ईशान से उन्होंने ले लिया, लेकर हाथ में पकड़ करके वो गए उस जमींदार के पास। ईशा तस्वर्ण मोहर आछिल आमार, यहाँ लया धर्म देखी पर्वत कर पार। सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्रा लेकर उस जमींदार के पास गए और उसको दे दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास ये 7 स्वर्ण मुद्रा है, आप इसको लेकर हमें पर्वत पार करा दीजिए। राजबंदिया में गढ़ द्वार जाते ना पारे, पुण्य हवे पर्वत आमा देह पार करे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं राजबंदी हूँ और इस प्रकार बंदीशाला से छूटकर आया हूँ, इसलिए मैं मुख्य पथ में जा नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके हमें ये पर्वत पथ जो है इसमें थोड़ा पार करा दीजिए, इसमें आपका धर्म होगा। भूया हसे कहे आमी जानी अच्छी पहले, अष्टम और है तुम्हारा सेवक अंचले। तो जमींदार हंस करके उसने कहा कि मुझे पता है, पहले से पता है कि तुम्हारे सेवक के पास 800 मुद्राएं हैं, 800 मुद्राएं। तुमा मारी मोहर लैतम अधिकार रात्र भाल हेलो कहला तुम्हें छुट्टी लंग पा पाए थे। तो जमींदार ने बता दिया कि आज रात में तुम्हें मारकर हम ये 800 मुद्रा ले लेते, ये हमारी योजना थी, किंतु अच्छा हुआ कि तुमने बोता दिया, इसलिए मैं पाप से बच गया, तुम्हें मारने के पाप से बच गया। संतुष्ट है लंगामी मोहर ना लेब पुण्य लगे पर्वत तुमा पार करी देव। तो जमींदार ने कहा कि अब तो मैं संतुष्ट हो गया कि तुम्हारी सच्चाई देखकर कि तुम अपने आप स्वर्ण मुद्रा लेकर आए हो मेरे पास, तो ठीक है अब हम इस स्वर्ण मुद्रा नहीं लेंगे, किंतु अपने धर्म के लिए ये पर्वत पथ को हम पार करा देंगे। गोसाई कहे क्या द्रव्य लई वे आमा हमारी हमार प्राण रक्षा कर द्रव्य अंगे करे। तो सनातन गोसाई ने कहा कि आप नहीं लेंगे स्वर्ण मुद्रा तो फिर और कोई हमें मार करके ले लेगा, तो इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए, आप ही लीजिए ये स्वर्ण मुद्रा और हमारे प्राण की रक्षा कीजिए। तबे भूया गोसाई संगे चरी पाइक दिल रात्र रात्र बन पथे पर्वत पार कैल। तो फिर उसने 7 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और कुछ 4 व्यक्तियों को दिया साथ में, सनातन गोस्वामी के साथ 4 रक्षक दिए और रात में वन पथ में वो पर्वत प्रदेश को उन्होंने पार करा दिया। तबे पार हया गोसाई पूछिला ईशान जानी से सद्रव्य किछु अछि तुमा स्थान। तो जब पर्वत पथ को पार कर गए तो सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से पूछा कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास और कुछ बचा है स्वर्ण मुद्रा। ईशान कहे एक मोहर अच्छे अवशेष गोसाई कहे तो मोहर लया जा तुम्हें देश। तो ईशान ने उत्तर दिया कि अब मेरे पास 1 स्वर्ण मुद्रा बचा है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है तुमसे ये वो मुद्रा लेकर अपने घर लौट जाओ, अब मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं। तारे विदाया दिया गोसाई चलीला एकला हाथे करो यहाँ छिंडा कंथा निर्भय हैला। तो ईशान जो अपना सेवक था उसको विदा करके सनातन गोस्वामी अकेले चलने लगे और उनके पास केवल पानी पीने का पात्र था और छिंडा कंथा, तो फटी पुरानी जो रजई है उसी को ओढ़ के और जल पात्र लेकर वो चल रहे थे निर्भय होकर, क्योंकि अब उनके पास कोई धन नहीं था इसलिए जीवन का भय भी नहीं था, धन होने पर जीवन का भय होता। चली चली गोसाई तबे आईला हाजी पूरे संध्या काले बसिला एक उद्यान भितरे। तो चलते चलते सनातन गोस्वामी अंत में हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे, ये पटना के पास है हाजीपुर गंगा के उस पर। तो संध्या के समय एक बगीचे के भीतर बैठे हुए थे सनातन गोस्वामी, श्री हाजीपुरे रहे श्रीकांत तार नाम गोसाई रा भगिनी पति करे राज काम। तो उस हाजीपुर में सनातन गोस्वामी की भगनी पति, उनके भगनी पति श्रीकांत रह रहे थे और राजा का कार्य कर रहे थे। वहां 3 लक्ष मुद्रा राजा दिया से तार स्थाने, घोड़ा मूल्य लया पठायो पत्सर स्थाने। तो ये राजा के लिए वहां हाजीपुर में रहकर, क्योंकि ये राज कर्मचारी थे श्रीकांत, तो राजा के लिए वहां घोड़ा खरीदते थे हाजीपुर में, इसलिए राजा ने उनको 3 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं दी थी। और ये घोड़ा खरीदने के लिए उनके पास ये मुद्राएं थी। तो इस प्रकार श्रीकांत घोड़ा खरीद खरीद करके भेजते थे राजा के पास हाजीपुर से, तो इसलिए वहां वही रह रहे थे हाजीपुर में। टुंगी ऊपर वसी सही गोसाई रे देखिला, रात्रे एक जन संगे गोसाई पास आयल। तो ये श्रीकांत जो है वो उनसे चबूतरे पर बैठे थे, तो उनकी दृष्टि पड़ी सनातन गोस्वामी की ओर, जो एक उद्यान में बैठे हुए थे संध्या के समय, तो वो पहचान गए। इसलिए रात में एक व्यक्ति को साथ लेकर वो सनातन गोस्वामी के पास आए श्रीकांत। द्विजन मिली तथा इष्ट गोष्ठी कैला, बंधन मोक्षण कथा गोसाई सकले कैला। तो दोनों बैठ करके कुछ समय तक बातचीत करते रहे। तो सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि किस प्रकार नवाब हुसैन शाह ने उनको बंदी बनाया था और किस प्रकार छूट करके आए हैं। तो ये सब बात उन्होंने बता दी। तेहों कहे दिन दुई रह स्थाने, भद्र हो छड़ यही मलिन बसने। तो उनकी बहनों ने कहा, श्रीकांत ने कहा कि आप यहाँ 1-2 दिन रहिए और आप अभी फटा पुराना कपड़े पहने हुए हैं, तो इसको बदल दीजिए, कुछ नया वस्त्र पहनिए, थोड़ा भद्र हुए, ये मलिन वस्त्र त्याग कीजिए। गोसाई कहे एक क्षण यहाँ न रहिब, गंगा पार करी देह एक क्षण चलिब। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हम यहाँ और एक क्षण रहना नहीं चाहते, इसलिए आप की ये कृपा होगी कि आप मुझे गंगा पार करा दीजिए, हम अभी तुरंत चले जाए। जत्न करी तेहूं एक भूट कंबल दिल, गंगा पार करी दिल गोसाई चलिल। तो श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को एक ऊन का कंबल दिया, क्योंकि उनके पास फटी पुरानी रजाई थी, तो उसके बदले उन्होंने कहा कि आप एक ऊन का कंबल साथ रखिए। तो फिर गंगा पार कराने में उन्होंने सहायता की, तब सनातन गोस्वामी गंगा पार करके चल पड़े। तबे वाराणसी गोसाई आईला कत दिने, सुनी आनंदित हेला प्रभु रो आगमने। तो इस प्रकार चलते हुए सनातन गोस्वामी कुछ दिनों के बाद वाराणसी आकर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए। तो ये बहुत इसलिए प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु के आगमन विषय में सुनकर। चंद्रशेखर घरे असी द्वारे ते वसिला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहला। तो सनातन गोस्वामी ने पता लगाया, जब उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं वाराणसी, तो उन्होंने पता लगाया कि कहाँ रह रहे हैं। तो उनको पता चला कि संत चंद्रशेखर के घर पर रह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो सनातन गोस्वामी ढूंढते हुए आकर चंद्रशेखर के घर पर पहुंचे और घर के बाहर उनके द्वार देश पर बैठे रहे। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि घर के भीतर थे और उनको पता चल गया कि सनातन गोस्वामी आए हुए हैं, तो उन्होंने चंद्रशेखर को कहा, द्वारे का वैष्णव है बुलाव तहारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नहीं को द्वारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि तुम्हारे द्वार पर एक वैष्णव बैठे हुए हैं, उनको भीतर बुलाओ। तो चंद्रशेखर गए बाहर देखने के लिए, तो देखा कि कोई वैष्णव नहीं है वहां। तो फिर वो लौट करके चैतन्य महाप्रभु से कहा कि वहां तो कोई वैष्णव नहीं है घर के द्वार पर। द्वारे ते वैष्णव नहीं प्रभु रे कहिलो, केह हय करी प्रभु तहारे पूछिलो। तब जब चंद्रशेखर ने कहा कि कोई वैष्णव नहीं है घर के द्वार पर, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि कोई तो है ना, अगर कोई वैष्णव नहीं कह रहे हो तो कोई ही बैठा है ना। तेहन कहे एक दरवेश आछे द्वारे, तारे आन प्रभुर वाक्य कहिल तारे। तो चंद्रशेखर ने कहा कि एक दरवेश बैठा है, अर्थात जो मुसलमान फकीर है संत है वो बैठा है द्वार पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उसी को बुलाओ। प्रभु तमाय बुलाए ऐसा दरवेश, सुनी आनंदे सनातन करेला प्रवेश। तो चंद्रशेखर ने जाकर कहा सनातन गोस्वामी से कि हे दरवेश, हे मुसलमान फकीर, आप कृपा करके भीतर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे। तो यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी बहुत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट हुए। तहारे अंगने देखी प्रभु धैया आयला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हैला। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा सनातन गोस्वामी को घर के भीतर आए, आंगन में देखा उनको, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और आलिंगन करके वो स्वयं प्रेमाविष्ट हो गए। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्ट हैला सनातन, मोरे ना छुड़िय कहे गदगद वचन, मोरे ना छुईय कहे गदगद वचन। तो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। फिर भी अपने रुद्ध वाणी में सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा स्पर्श मत करिए। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर रहिला चमत्कार। तो दोनों को आलिंगन किए हुए हैं सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों प्रेमाविष्ट हो रहे हैं और रोदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, अर्थात उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की वृष्टि हो रही है। प्रेमासुर संग कर रहा है। तो इस दृश्य को देखकर चंद्रशेखर बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये मुसलमान फकीर कौन है जिसको चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं और प्रमाविष्ट हो रहे हैं और रो रहे हैं, और वो मुसलमान फकीर भी ऐसा कर रहा है, प्रमाविष्ट होकर रो रहा है। तो चंद्रशेखर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है। तबे प्रभु तार हाथ धरी लयांगला पिंडार उपरे आपन पासे बसाइला। तब से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के हाथ पकड़ करके ले गए जहां बैठे थे। तो पिंडा के ऊपर अर्थात जो ऊंचा स्थान था वहां बैठे हुए थे, तो उसके ऊपर जाकर सनातन गोस्वामी को पास में बिठाया। श्रीहस्ते करे न तार अंग समार्जन तेहूं कहे मरे प्रभु न कर स्पर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पास में बिठाया और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से सनातन गोस्वामी के जो शरीर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी कई दिनों से बिना खाए पिए पैदल चलकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, इसलिए उनका शरीर धूली धूसरित था, सब धूल पड़ी हुई थी शरीर में। चैतन्य महाप्रभु इतने प्रभावित हुए सनातन गोस्वामी के कष्ट को देखकर कि उनसे मिलने के लिए उन्होंने कितना कष्ट उठाया। एक तो बंदीशाल से भाग कर आए और रास्ते में कितना कष्ट उठाया, वहां प्राण चला जाता, और बिना खाए पिए पैदल चले हुए आ रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि भक्त वत्सल है अपने भक्त के कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्वयं अपने हाथ से सनातन गोस्वामी के शरीर को पोंछ रहे हैं, समार्जन कर रहे हैं, धूल झाड़ रहे हैं शरीर से। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरा स्पर्श मत करिए। ये सनातन गोस्वामी की विनम्रता। प्रभु कहे तुम स्पर्शी आत्म पवित्रते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप मेरा स्पर्श मत करें, तो इसलिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्पर्श इसलिए कर रहा हूं कि मैं स्वयं शुद्ध हो जाऊं, शुद्ध मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं, और तुम अपनी भक्ति के बल पर सारे केवल मुझे नहीं सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति रखते हो। सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपनी भक्ति के बल पर सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति रखते हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भक्ति के बल पर केवल मैं पवित्र नहीं होता हूं, सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाए।
भवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वंतस्तेन गदाभृता। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तो जिसमें बताया गया है तो ये महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था। विदुर जब तीर्थाटन करके आए थे उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि आप जैसे संत स्वयं तीर्थस्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः ये तीर्थस्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तो जब भगवान के भक्त होते हैं, ये स्वयं तीर्थस्थान के समान है, क्योंकि वो अपनी पवित्रता के कारण भगवान के नित्य पार्षद बन जाते हैं, इसलिए तीर्थस्थलों को भी पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। तो जिस प्रकार लोग जाते हैं, तीर्थ करते हैं, तीर्थ जलों में स्नान करते हैं, और इसी उद्देश्य स्नान करते हैं कि तीर्थ में स्नान करने से उनका पाप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं तीर्थों में स्नान करने के लिए, और तीर्थ सारे लोगों का पाप स्वयं बहन करता है, तो सारे लोगों का पाप बहन करके तीर्थ भारी बन जाता है, पापों से भारी बन जाता है। इसलिए जब भगवान के भक्तजन, जो शुद्ध भक्त हैं, ये लोग जब तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो ये तीर्थों के पाप को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि कहा गया कि तीर्थ भी तीर्थ करते हैं, ऐसे महात्मा का संग पाकर अपने पापों से मुक्त हो जाता है, पाप के भार से। क्योंकि सिद्ध भक्त जो होते हैं वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, सदा सर्वदा हृदय में भगवान को धारण करते हैं, अर्थात सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। इसके कारण स्वयं शुद्ध है और जिसको स्पर्श करते हैं वो भी शुद्ध बन जाता है। नमे भक्तः चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपच प्रिया तस्मिन् देयं ततो ग्राहं स च पूज्यो यथायम्। ये भगवान कृष्ण ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड विद्वान क्यों न हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध न हो वह तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वह शुद्ध भक्त है, और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये जो शुद्ध भक्त है वो सकाम कर्म और मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित होता है। निस्संदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए, और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य है, ये भगवान स्वयं कह रहे। विप्राद्वीत सद्गुण युता अदरविंद नाव पादारविंद विमुखा सपचं वरिष्ठं मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई बारहों ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु यदि वो कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपना मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चंडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है। जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर की बात। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और इसमें जो ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं ये महाभारत में कहा गया है कि ब्राह्मण के 12 गुण क्या है। धर्मस्य अधर्मस्य सत्यं च दमस्य तपस्य अमात्सर्यं हि स्थितिक्षानुसूया यज्ञश्च दानं च धृते सुतं च व्रतानि वैद्वादश ब्राह्मणस्य। ब्राह्मण को पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए, उसे सत्यवादी तथा इंद्रियों को वश में करने में समर्थ होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण के गुण है। उसे कठोर तपस्या करनी चाहिए, उसे विरक्त विनीत तथा सहिष्णु होना चाहिए, उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे यज्ञ करने में पटु होना चाहिए और उसके पास जो भी हो उसे दान में दे देना चाहिए, उसे भक्ति में दृढ़ तथा वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ब्राह्मण के ये 12 गुण हैं। और भगवत गीता में कुछ ब्राह्मण के गुण भी बताए गए हैं, जैसे समुदम तपस्तपौचम क्षंति आर्जमयोच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शांति प्रियता, आत्मनिग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण बताए गए। और मुक्ताफल टीका में भी कहा गया है ब्राह्मण के जो 12 गुण हैं उसमें समोदमस्तप शौचम क्षांत्यार्जव विरक्तय ज्ञान विज्ञान संतोष सत्यस्तिक्तेत ईश्वर गुण है। मानसिक संतुलन, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, विरक्ति, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, संतोष, सच्चाई तथा वेदों में दृढ़ विश्वास, ये ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए। ठीक है, अरे विश्राम लेते हैं। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि
देव की जय।
कल का एक प्रश्न रह गया था, तो एक प्रश्न था, ये कल का था। किस प्रकार एक भक्त रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तरह स्वाभाविक विनम्रता विकसित कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु वस्तुतः अपने शिक्षाष्टक में किस प्रकार इस विनम्रता को विकसित करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन कर सकता है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त को विनम्र होना चाहिए, अर्थात अपने को तीन से भी, रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी अपने को नीच समझना चाहिए, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु, और अपने लिए सम्मान की प्रतीक्षा नहीं करना है और दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहना है। तब जाकर इस मनस्थिति में कोई भगवान का नित्य निरंतर नाम संकीर्तन कर सकता है। तो ये विनम्रता भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि किसी में ये विनम्रता नहीं है, इसके बदले उसके मन में अहंकार है, तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और ऐसे अहंकारी व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन उपयुक्त समर्पण भाव से नहीं कर सकता। इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग में, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने इसका प्रदर्शन किया है। तो ये कैसे संभव है कि हम कैसे अपने मन में अहंकार को त्याग करके विनम्रता ला सकते हैं? क्योंकि स्वाभाविक है कि यहां तक कि हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो उसमें हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हम अब बहुत बड़ा भक्त बन गए, और कुछ शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो और अहंकार बढ़ जाता है। तो ये भक्ति में बाधक है। तो ये विनम्रता लाने के लिए ये आवश्यक है कि हम भगवान की सेवा करने के साथ साथ महान वैष्णवों की सेवा करें। तो वैष्णवों की सेवा ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये हमें हमारे हमारे मन में जो अहंकार है उसको दूर करता है और मन में ये विनम्रता का भाव लाता है। ये वैष्णवों की सेवा ये हमारे संप्रदाय में जो किसी चैतन्य महाप्रभु ने हमारे इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में जो अन्य संप्रदायों से जो सार ग्रहण किया है, उसमें वैष्णव सेवा ये श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय से ग्रहण किया था, शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा। ये वैष्णव सेवा ही हमें नम्र कर सकता है अपने को। तो इसलिए चाहे कोई महान भक्त हो या नहीं हो, फिर भी यदि कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है, भगवान की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, तो ऐसे भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे महान भक्तों की सेवा तो हमें करना आवश्यक है, उससे हम शुद्ध होते हैं। उसके साथ साथ दूसरे भक्तों की भी हमें सेवा करनी चाहिए, इससे कि हमारे मन में जो अहंकार है वो दूरीभूत होगा। हम क्यों सेवा दूसरे भक्तों की करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमारे मन में अहंकार है, हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा भक्त हैं, तो हम दूसरे भक्तों की क्यों सेवा करें, वो हमसे छोटा है, नीचा है। तो इसलिए हम जाते ऐसे देखते हैं, एक कृष्णदास थे कालिदास जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और ये सभी के उच्चिष्ट ग्रहण करते थे छिप छिप करके, इससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को वो प्राप्त हो गए थे। तो वैष्णव लोग जो खाते हैं फेंक देते हैं, वो छिप करके आके उसको ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार विनम्रता की वृद्धि होती है जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके साथ साथ हमें सदा सर्वदा ये सोचना चाहिए, हमारी स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है कि हम इस भौतिक संसार में जो आए हैं, तो इस भौतिक संसार में आकर हम कितना कष्ट में है, दुख में है। जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक हम ये दूसरों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, ये सब हम नहीं चाहेंगे। हमें ये अनुभव होना है कि हम यद्यपि चाहते हैं कि संसार में हम सुखी रहें, किंतु हम देखते हैं कि हम सुखी होने के प्रयास में तरह तरह के कष्ट भोग करते रहते हैं। शारीरिक कष्ट, मानसिक यंत्रणा, ये सब होता रहता है और सभी का कुछ न कुछ अनुभव होता है। और यदि अनुभव नहीं भी है, फिर भी शास्त्र में बताया गया कि यदि हम बुद्धिमान हैं, जो शास्त्र वाक्य है उसको कम से कम हमें ग्रहण करना आवश्यक है। जो शास्त्र वाक्य को ग्रहण नहीं करते हैं उनको अनुभव की आवश्यकता होती है, वो कष्ट भोग करने की आवश्यकता होती है, तब फिर उनका अनुभव होता है कि संसार कष्टमय है। किंतु जो बुद्धिमान है वो शास्त्र वाक्य को तुरंत ग्रहण कर जाते हैं और ये सोचते हैं संसार दुखमय कष्टमय है, इसलिए इससे निकलने के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है और इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें नम्र होना आवश्यक है और नम्र होने के लिए हम छोटी से छोटी सेवा भी, चाहे वो भगवान की सेवा हो, भक्तों की सेवा है, ये सब हमें करना आवश्यक है, जिससे कि हम वैष्णव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और जो उतना बुद्धिमान नहीं है वो चाहेंगे कि थोड़ा अनुभव होने पर वो लोग ग्रहण करेंगे। जैसे किसी बच्चे को बताया जाता है कि आग में हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा, तो बुद्धिमान बच्चा तो मान लेगा, आग में हाथ नहीं डालेगा। और जो बच्चा सोचेगा कि नहीं, हम थोड़ा अनुभव करके देखेंगे कि क्या होता है, वो आग में हाथ डालता है, जल जाता है, फिर वो सावधान हो जाता है। और जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, वो तो विश्वास नहीं करता है। वो बच्चा आग में हाथ डालता है, हाथ जल जाता है, फिर उसको भूल जाता है, फिर दूसरी बार डालता है। तो हमें बुद्धिमान कम से कम प्रथम और द्वितीय श्रेणी में हमें रहना चाहिए। हमें बुद्धिमान होना चाहिए, शास्त्र वाक्य को ग्रहण करना चाहिए और अनुभव से भी सीखना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं इस विनम्रता के साथ। अन्यथा ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी हमारी भक्ति में। जब हम मन में अहंकार को रखते हैं और अहंकार की सेवा करते हैं, अगर यदि हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, अहंकार की सेवा करेंगे, स्वाभाविक है। तो ये वैष्णव सेवा बहुत आवश्यक है विनम्रता को प्राप्त होने के लिए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यद्यपि ये राज कार्य कर रहे थे, धन का अभाव नहीं था, फिर भी उनको शास्त्र का ज्ञान था, इसलिए वो जानते थे कि संसार क्या है और संसार से मुक्त होने का क्या उपाय है। और उनका सौभाग्य था कि चैतन्य महाप्रभु का संग उनको प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, इसलिए वो चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु ही चाहते थे कि गोस्वामीगण ये लोग दूसरे भक्तों के लिए आदर्श स्थापित करें। तो जो षड गोस्वामी वृंदावन में है, ये चैतन्य महाप्रभु ने उनमें शक्ति संचारित किया था, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी में वैराग्य, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैराग्य प्रदर्शन किया, उत्कट वैराग्य। तो उसी प्रकार सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये अत्यंत विनम्र भाव को ग्रहण किए हुए थे। तो इससे यद्यपि बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी इतना नम्र है। इनसे हमें सीखना चाहिए। हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं, कुछ सेवा कर देते हैं, हमारे मन में अहंकार आ जाता है कि हम इतना कुछ जानते हैं, इतना करते हैं। तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए सदा सर्वदा जो भक्त हर समय अपने को नीच मानकर दूसरों की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है और सदा सर्वदा कृपा भिक्षा करता है भगवान की और वैष्णव की, तो वह नम्रता पूर्वक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है और अंत में भगवान की कृपा को भी प्राप्त कर सकता है। और कोई प्रश्न?
जय जगन्नाथ।
तो भालो ना ओढ़ीबो और भालो ना खाइबो इसके ऊपर ये जय जगन्नाथ बैंकॉक से प्रश्न कर रहे तो चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की थी रघुनाथ दास गोस्वामी को, वैराग्य की शिक्षा। तो उन्होंने ये उपदेश दिया था, भालो ना खाइब और भालो ना पड़िब, अर्थात हर समय अच्छा खाद्य खाने के लिए इच्छा प्रकाश नहीं करना। जो भी मिला भगवान की कृपा से उसको ग्रहण करना और अच्छा पहनना, जैसे ये साधारण लोगों में ये आसक्ति होती है कि किस प्रकार अच्छा खाएं, अच्छा पहने, ये लोगों में ये इच्छा होती है, स्वाभाविक है। किंतु जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको इससे निवृत्त रहना चाहिए। ये अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये इसके पीछे न दौड़ करके, क्योंकि इसके पीछे कोई दौड़ेगा तो उसका मन उधर जाएगा, हर समय खाने के बारे में सोचेगा, हर समय पहनने के बारे में सोचेगा, उसने ये वस्त्र पहना है, ये हमसे अच्छा है, हम कैसे ऐसा वस्त्र पहनेंगे, क्या कोई ऐसा खा रहा है, हम भी ऐसा खाएंगे, उसका ध्यान पूरा जाएगा पहनने के लिए और खाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारा मन कृष्ण में लगना चाहिए। तो हमारे शरीर की जो सर्वनिम्न आवश्यकता है, इस सर्वनिम्न आवश्यकताओं को हमें जीवन धारण के लिए ग्रहण करना है। जैसे हमें खाना आवश्यक है शरीर धारण के लिए, पहनना आवश्यक है, तो जितना खाने से हमारा शरीर धारण हो सकेगा हमें उतना ही खाना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है कि अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमांग्रह, तो ये भक्ति में बाधा कहा गया। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक आहार करना या सदा सर्वदा अच्छे खाने के बारे में सोचना, तो इससे कृष्ण में मन नहीं लगेगा। इसलिए हर स्थिति में कृष्ण के ऊपर निर्भर करना और जो भी मिल गया उसमें संतुष्ट रहना। कभी अच्छा मिला, कभी उतना अच्छा खाद्य नहीं मिला, जो भी मिला, कभी कुछ नहीं मिला, ऐसा भी होता है। तो हर समय कृष्ण के ऊपर निर्भरशील रहना है और कृष्ण की कृपा समझना। हम जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो कृष्ण की कृपा, जो भी मिला कृष्ण की कृपा, हमें जितना आवश्यक है। ये नहीं कि आज बहुत अच्छा हुआ है, इतना खा लिया कि हजम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना। जितना आवश्यक है शरीर के लिए, अधिक नहीं खाना या कम भी नहीं खाना, जितना आवश्यक है ग्रहण करना और जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उसी को ग्रहण करना, उसी में संतुष्ट रहना। और पहनना भी तो सादा सीधा, जितना आवश्यक है शरीर धारण के लिए हम उसको पहनेंगे, क्योंकि ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस शरीर को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हमारा उद्देश्य है अपने मन को कैसे कृष्ण के चिंतन में लगाएंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए खाना पीना पहनना इसके प्रति उतना ध्यान न देकर जितना आवश्यक है ग्रहण करना, हर समय कृष्ण की चिंतन करना, उनका चिंतन करना और उनकी सेवा में लगे रहना, और केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना, ये भी आवश्यक है कि भगवान को जो भोग लगाया गया है उसको ग्रहण करना है, तो इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो बैराग्य का प्रदर्शन कर रहे थे, वो बैराग्य सभी प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो फेंक देते हैं ना, वो नाला में आता है, किचन के नाला में, रघुनाथ गोस्वामी वहां से महाप्रसाद उठा करके महाप्रसाद का जो अन्न उसको पानी में धोते थे, उसमें जो सड़ा हुआ था सो चला जाता था, जो बच्चा हुआ रहता था उसमें थोड़ा नमक डाल के खाते थे। इतना वैराग्य कौन प्रदर्शन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से ऐसा उपदेश दिया था। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनमें वैराग्य ही प्रधान है, ये देखा गया है। जितने भी भक्त हैं उनमें वैराग्य प्रधान है, अर्थात संसार भोग से वैराग्य और कृष्ण के प्रति आसक्ति, इसी के कारण ये लोग इतने महान हुए हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होना और संसार भोग से विरक्त होना, यही वास्तविक वैराग्य। हरे कृष्ण। और कोई? जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय।